मृदुल जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
यहाँ पर स्टूडियो में बुलाकर आपने जो मुझे मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ।
आपके बारे में क्या कहूँ मैं, आपने कितने सारे ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद कर डाला है। वो ग्रंथ जो शायद हमारे लिए अछूते से थे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में हैं, और उसमें सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी सामवेद का, जहाँ से शायद आपने शुरुआत भी की।
जी।
पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ज्ञान का जो ये बीज है, ये आपके अंदर कहाँ से आया और कब अंकुरित हो गया, इसके बारे में जानना चाहूंगी।
ये आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है और सारगर्भित है, और ये इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि संस्कारों का दर्शन इसमें जुड़ा हुआ है। हम तीन तरह से संस्कारित होते हैं। एक, अपने जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं उसके जो वैचारिक बीज और परमाणु होते हैं वो संचित होते रहते हैं। और एक, यहाँ पर मैं आपको एक अचानक मुझे याद आ रहा है
जी,
कि भगवद गीता का जब मैंने अनुवाद किया था तो उसमें 16वें अध्याय का 8वां मंत्र है, या मंत्र संख्या मैं भूल रही होंगी, लेकिन 16वें अध्याय का है, जिसमें वासुदेव कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न है कि कैसे संस्कारित होता है और उसका आपके पुनर्जन्म पर क्या असर होता है। तो उसका जो श्री कृष्ण ने जवाब दिया था, उस उत्तर को मैं यहाँ कहूंगी, उसको ब्रज भाषा में कहती हूँ जो अनुवादित किया है। यही तत्व गहन अति सूक्ष्म की जस वायु मा गंध समावती है, तस देहिन, देहिन माने आत्मा, तस देहिन देह के भावन को नव देह में हो ले जावती है। नई देह में हम अपनी भावना और विचारों के बीच परमाणु ले जाते, ये मैं नहीं कह रहे, वासुदेव कहते हैं अर्जुन से, तो वो गलत कहाँ हो सकता है। तो इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं, जो वैचारिक प्रधानता होती है, वही प्रधानता हमारे अगले जन्म के लिए पृष्ठभूमि होती है, मनोभूमि होती है, आत्मभूमि होती है। एक तो ये कारण
जी।
दूसरा, माँ के गर्भ में जो माँ सोचती है उसका आंशिक प्रभाव होता है, क्योंकि जब पूरा शरीर बनता है वहां तो मस्तिष्क भी तो बनता है, तो माँ के चिंतन शैली बच्चों में आती है। तीसरा, जिस परिवेश में जन्म लेता है, तो वहां का जो वातावरण है, जो बौद्धिक है, कैसा भी है, कार्य क्रियाकलाप है, उन सबका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जाने और अनजाने चित्त पर प्रभाव होता है। इन तीनों के समायोजन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और इसलिए उसकी पृष्ठभूमि अलग होती। तो मैं कह सकती हूँ कि कदाचित इसको पतंजलि योग दर्शन में भी भव प्रत्यय कहा गया है, कि जो आपने पहले जन्म में किया वो इकट्ठा होता है। तो एक तो मेरा वो कारण रहा होगा, अब मैं नहीं जानती, वो तो प्रभु जाने, और दूसरी, माँ मेरी और पिता और परिवेश इतने संस्कारी थे कि मुझे 12 वर्ष की उम्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ी थी, चाहे मेरे अंदर आई ना आई, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता था, वो पढ़ता था, वो मुझे उसके अंश। दूसरा, परिवेश मेरे घर का बहुत यज्ञ, और कि स्वामी दयानंद मेरे घर आए थे, एक ये भी होता है। दूसरे, में जब ऋग्वेद भाष्य भूमिका आदि और ये सब जो परिवेश था उसमें मैं मन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे तो जैसे सहेलियां बुला रही हैं तो मुझे खेलने जाना है, और उसमें इतना अरुचिकर काम आ जाए, तो मेरी माँ परख जाती थी। उन्होंने कहा था एक दिन, जो कहा वो मुझे आज तक याद है, कि तुलसी अपने राम को हीज भजो या खीज, हीज माने हृदय से, खीज माने खिसिया के, पर भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। तो शायद उन्हीं बीजों का अंकुरण हुआ है, वो मेरा तो उत्तर यह हुआ।
जी, यानी चाहा या ना चाहा, कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान आप बचपन से बटोर रही थी, वो कहीं ना कहीं संचित हो रहा था, और आज आपकी इन पुस्तकों के माध्यम से वो बाहर आ रहा है। और इतनी सारी पुस्तकों का अनुवाद किया, हिंदी भाषा में तो किया, साथ में आपने ब्रज भाषा में भी किया है, तो उसका कारण कुछ जानना चाहूंगी। सुनने में बहुत मृदुल है, आपने अभी उसका उदाहरण भी दिया कुछ बात करके, तो यूं लग रहा था कि जैसे जल प्रवाह हो रहा है एक मधुरता का।
शायद इस प्रश्न का उत्तर मैं दे भी नहीं सकती, क्योंकि मैं एक ऐसे विचार आया कि श्री कृष्ण की मूल भाषा जो हमने सुनी है, जब वो अवतरित हुए हैं तो जिस माध्यम से वो समाज में बोले हैं, तो जितनी मैंने पुस्तकें वगैरह पढ़ी है या सभी लोग जानते हैं ब्रिज के थे तो ब्रिज भाषा बोलते थे। एक दिन अनायासी विचार आता है कि भगवत गीता और उसके संदेश ब्रिज भाषा में नहीं है, और ये विचार आया, लेकिन इस विचार का पोषण किसने किया वो वासुदेव जानते हैं। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं या मेरे परिवार का कोई भी ब्रज के पिछवाड़े से भी नहीं निकला है, और मैं ब्रज बिल्कुल नहीं जानती हूँ, अभी भी नहीं जानती, और मैंने अनुवाद किया, ये भी एक सत्य है। तो यहाँ मैं आपको एक उसका सौंदर्य दिखाती चलती हूँ
जी,
कि जैसे यदा यदा ही धर्म से सबको आता है
जी,
तो मैं उसका ही अनुवाद आपको एक प्रसाद कण के रूप में देती हूँ कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम। तो इसको ब्रिज भाषा में सुनिए, और इसके साथ साथ मैं श्रोताओं का ध्यान इस विषय पर भी लाना चाहूंगी कि हमारे हिंदी वर्णमाला में धा कठोर माना जाता है, तो उस कठोर में कोमलता का समावेश देखें, और अनुप्रास अलंकार है ये, जिसमें एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसमें धा का सौंदर्य आपको दिखाती हूँ। जब धर्म धरा पे नसावत है, जब धर्म धरा पे नसावत है, अधर्म पांव पसावत है, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आनी बचावत है।
क्या बात है, अनुप्रास की क्या बात है यहाँ पर
जी, इस तरह ये ब्रज भाषा में क्या। एक और मुझे याद आता है कि चौथे अध्याय में अर्जुन रथ के पीछे बैठ जाते हैं, वासुदेव मैं युद्ध नहीं करूंगा, और आप ये बताएं, कभी तो आप कहते हैं ज्ञान योग, कभी कहते हैं कर्म योग, कभी कहते हैं भक्ति योग, और मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, निश्चित होकर कृपया एक बात कहें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसको अच्छे एत योरेकम तन में ब्रूहि सुनिश्चितम संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम ससंशि एच्छे एत योरेकम तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। निश्चित होकर एक बात कहे, इसे ब्रज भाषा में सुनिए। कबहू कहत निष्काम, कबहू कहत निष्काम, कबहू तुम ज्ञान को श्रेय बताए रहे, फिर काहे बेचारे अर्जुन कौ तुम कर्मन घोर फसाए रहे।
कितनी आसान सी भाषा में इतनी बड़ी बात आपने दोहरा दी।
ये तो ब्रज भाषा का मर्म मैंने आपको बताया, ये केवल प्रसाद है और इसमें कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि शायद ये प्रयास से काम नहीं हो सकते।
मृदुल जी, हमने शुरू में सामवेद की बात की, उसकी भी कुछ पंक्तियां हमें सुनाइए ना।
सामवेद वस्तुतः और मूलतः स्तुति परक है, और इसमें बहुत सारे यजुर्वेद और ऋग्वेद के मंत्रों का भी समावेश है, और इसका पहला ही मंत्र आपको बताते हैं, अग्न आ याही वीतये ग्रणरानो हव्यदायते निहोता सस्सी बहर्षि। जितना याद आ रहा है, हे परमेश्वर सुखदाता तू ब्रह्मांड विश्व में व्यापक है, दे ज्ञान श्री व सुख शांति रिद्धि है, अखिल विश्व तेरा याचक है। ये ऋषियों की संस्कृत को सरल भाषा में लाई हूं
जी। आपने उपनिषदों का भी काव्यात्मक अनुवाद किया है
जी,
तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए।
बताती हूँ, उपनिषदों के परिवेश की जब बात होती है, वैसे तो बहुत हैं उपनिषद, लेकिन जो विशेष हैं वो 11 हैं
जी।
उसमें ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांड्युक ऐत्रे तैत्रीय श्वेताक्षर बृहदारण्यक और छांदोग्य, लेकिन छांदोग्य और बृहदारण्यक के कलेवर बहुत विस्तृत हैं, और गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, ब्रह्मवाद है, द्वैतवाद है, इन सब का है, लेकिन मैंने ये आरंभ के जो 9 उपनिषद हैं इनका हरिगीतिका छंद में काव्य अनुवाद किया है। तो एक तो आपको ईशावास्योपनिषद के विषय में बताना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ईशावास्योपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं, और इसके ये 18 मंत्र ही गीता के 18 अध्याय बने हैं आगे जाकर
जी।
और इनके ये इन उपनिषदों के कथ्य विषय अलग अलग रहे हैं। इसमें ईशावास्योपनिषद जो है वो पूरा जीवन शैली है कि व्यक्ति को कैसे रहना है, किस तरह रहना है, कैसा आचार संहिता, व्यवहार संहिता, और अंत तक अंतिम मतलब प्रयाण तक की यात्रा का इसमें वर्णन है। इसके मैं आपको एक दो, क्योंकि वैसे तो विस्तृत कलेवर हो जाएगा जो संभव नहीं है यहाँ पर, तो पूर्ण मदह पूर्ण मदम ये सभी जो घरों में जानते होंगे, तो ये हरिगीतिका छंद में है, और छंद की शैली है पहले चरण में 16 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 14 मात्राएं होती है और अंत में गुरु होता है। तो अनुवाद के समय हम स्वतंत्र नहीं होते, हम किसी ऋषि की कही हुई बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उनकी मानसिकता में प्रवेश करना पड़ता है
जी।
तो उसका अनुवाद सुनाती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अनुवाद सुनिए। परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, यह जगत भी प्रभु पूर्ण है। परिपूर्ण प्रभु की पूर्णता से पूर्ण जग संपूर्ण है। उस पूर्णता से पूर्ण घटकर पूर्णता ही शेष है। परिपूर्ण प्रभु परमेश की यह पूर्णता ही विशेष है।
बहुत ही सुंदर, उसमें जो प्रवाह है वो महसूस होता है सुनकर
जी। पता है, मैंने कहा ना पहले उसको समर्पित किया, उसके बाद आगे बढ़े
जी। आपने पतंजलि योग दर्शन का भी अनुवाद किया है, ये शायद पहला अनुवाद है विश्व में जो आपने किया है
जी।
तो इसके बारे में बताइए कि उसको संजो पाना क्या कुछ कठिन काम रहा?
हाँ, ये विशेष कठिन था क्योंकि पतंजलि योग दर्शन जो है ऋषि पतंजलि का गणितीय भाषा में लिखा गया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, जिसे फॉर्मूला कह सकते हैं कि जैसे पानी का फॉर्मूला H2O है, तो उसमें अंश भर भी ना आप इधर जा सकते ना उधर, जो बात कहा तो एक फॉर्मूला है
जी।
तो ऐसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये एक सूक्त है, तो इस सूक्त को एलिबरेट कर विस्तार से सब बात कह देना और वो भी निश्चित मात्राओं में, एक फ्रेम है उस छंद में कह देना, तो वो मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था और मुझे किसी ने चुनौती नहीं दी, मैंने स्वयं से स्वयं की चुनौती ली कि नहीं मैं इसको करूंगी
जी।
तो ये विश्व का पहला अनुवाद बन पड़ा है और इसको एक बार नहीं दो बार ये छप चुका है। एक बार जब छपा तो स्वामी रामदेव ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, ह्यूस्टन में इसका विमोचन किया। फिर दूसरा प्रसंग ऐसा आया कि पतंजलि योग दर्शन का सुन के प्रभात प्रकाशन को बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको दोबारा नए स्वरूप में, पहले पतंजलि योग दर्शन के सूक्त, फिर उसके बाद मेरा काव्यानुवाद, फिर इंग्लिश में अनुवाद और उसके बाद व्याख्या, इस तरह से चार चरण में करके ये पर है। शंकराचार्य पे दो ग्रंथ हो गए हैं, एक शंकर पंचदशी जिसे विवेक आपका भज गोविंदम जो था, तो इसमें स्तुति स्रोत साहित्य है शंकराचार्य के और 15 स्तुति स्रोत साहित्य हैं जिसको ज्योतिर्मठ में स्वयं शंकराचार्य ने छापा। तो इसमें भज गोविंदम, निर्वाण षडकम, अप्रोक्षानुभूति, आत्मबोध और साधन पंचकम, माया पंचकम, लघु वाक्य वृत्ति और कनक धारा स्रोत, दृग दृश्य विवेक आदि आदि, इस तरह ये 15 स्तुति स्रोत साहित्य हैं। लेकिन शंकराचार्य के जो विवेक चूड़ामणि है वो ग्रंथ मेरा लगभग पूरा है, अब वो प्रेस में जाने वाला है और उसके बाद
जी। और इसके बाद अब आप किस पे काम करने वाली हैं या आपके मन में और क्या आ रहा है?
मैं आगे योग वशिष्ठ पे काम करूंगी क्योंकि जो जीवन का जो अंश है वो मैं देखूं तो सही, वशिष्ठ ने राम को क्या उपदेश दिया।
यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जो आपने अनुवाद किए हैं, काव्यात्मक अनुवाद हैं हिंदी और ब्रज भाषा में, इसकी मूल प्रतियां आपको कैसे उपलब्ध हुई और वो मूल ही हैं, ये किस तरह से आपने
पुष्टि की? विशेष रूप से तो मैंने गोरखपुर की जो आपकी गीता प्रेस है उसको प्रामाणिक माना।
अच्छा।
क्योंकि वहां पर जो भी छपता है वो प्रामाणिक होता ही है और वो दोष तो इंसान से हो जाए वो दूसरी बात है
जी।
लेकिन वहां पर पूरा मूल्यांकन करने के बाद प्रति को छापा जाता है, ये पुष्टि वाली बात है।
मृदुल जी, मन तो नहीं भरा लेकिन अभी आपको आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और आप जो आगे काम करने जा रही हैं योग वशिष्ठ पे उसके लिए आपको शुभकामनाएं अपनी तरफ से भी और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से भी।
धन्यवाद अनीता जी, और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और नमन।